शब्दार्थ सोम अपना निजी लोकम घर को न कभी नहीं विदोह जानते हैं ते ऐसे व्यक्ति वही निश्चय ही यत्रा जहां देवः श्री भगवान जनार्दनः कृष्ण या विष्णु आहु कहते हैं धूम्रधियः अल्पज्ञानी व्यक्ति वेदम चारों वेद सकर्मकम कर्मकांड अनुष्ठान से पूर्ण अतद्विदः ऐसे व्यक्ति जिन्हें ज्ञान नहीं है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। अल्पज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेदों का उद्देश्य अपने निजी धाम को वापस जाना है, जहां श्री भगवान निवास करते हैं। अपने असली धाम में रुचि न रखकर वे मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री राधा रास बिहारी की जय, सीताराम लक्ष्मण। कृपया दोहराइए, अल्पज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेदों का उद्देश्य अपने निजी धाम या घर को वापस जाना है, जहां श्री भगवान निवास करते हैं। अपने असली धाम में रुचि न रखकर वे मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। तात्पर्य, सामान्यतः लोग अपने इस जीवन स्वार्थ से कि भगवान के धाम वापस जाना है अपरिचित होते हैं। वे आध्यात्मिक जगत में अपने असली धाम को नहीं जानते। आध्यात्मिक जगत में अनेक वैकुंठ लोक है और सर्वोच्च लोक तो कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन है। तथाकथित सभ्यता की प्रगति के बावजूद लोगों को वैकुंठ लोकों की कोई जानकारी नहीं है। इस समय तथाकथित सभ्य लोग अन्य ग्रहों या लोकों को जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे यह नहीं जानते हैं कि यदि वे सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक चले भी जाएं, तो उन्हें पुनः इस लोक में आना होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में इस प्रकार हुई है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्यु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक की सभी लोक क्लेश के स्थान है, जहां बारंबार जन्म मृत्यु होते रहते हैं। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह पुनः जन्म नहीं लेता। यदि कोई इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंच भी जाए तो भी पुण्य कर्म के क्षीण हो जाने पर उसे वापस लौटना पड़ता है। अंतरिक्ष जान आकाश में भले ही अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त कर लें, किंतु जो ही उनका ईंधन चुक जाता है उन्हें पृथ्वीलोक पर लौट आना पड़ता है। ये सारे कार्य मोहवश संपन्न किए जाते हैं। भगवान के धाम वापस जाने का असली प्रयास अब होना चाहिए। यह विधि भगवद गीता में वर्णित है, यान्ति मद्याजिनोपि माम। जो लोग श्री भगवान की भक्ति करते हैं वे भगवान के धाम को वापस जाते हैं। मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है, अतः मनुष्य को चाहिए कि अन्य लोगों की खोज में इस जीवन को व्यर्थ न गवाए। उसे इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह भगवान के धाम वापस जा सके। उसे आध्यात्मिक वैकुंठ लोक के विषय में और विशेष रूप से गोलोक वृंदावन नामक लोक के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए, और भक्ति जैसी सरल विधि से जो श्रवण करने से प्राप्त होते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वहां पहुंचने की कला सीखनी चाहिए। इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद के 3 अध्याय की 51 नंबर श्लोक में भी हुई है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके मनुष्य परम लोक को जा सकता है, परं व्रजेत। यह इस युग के लोगों पर विशेष रूप से लागू होता है। कलौ दोष निधे, इस युग का विशेष लाभ यह है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र की जप करके मनुष्य समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध होकर भगवान के धाम वापस जा सकता है, इसी में कोई संदेह नहीं है। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरुः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वंग्लोकं न विदुस्ते वै जत्र देवो जनार्दन आहु धूम्रधियो वेदं सकर्मकं अतद्विदः। अल्पज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेदों का उद्देश्य अपने निजी धाम घर को जानना है, जहां श्री भगवान निवास करते हैं। अपने असली धाम में रुचि न रखकर वे मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। तो ये वचन कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि की उक्ति व नारद मुनि के मुखारविंद से ये श्लोक निश्रुत है। और जैसे आप जानते हैं कि नारद मुनि सारा जगत में भ्रमण करते करते हैं, बुद्ध जी को उद्धार कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि यही महात्माओं की विशेष लक्षण होता है कि बुद्ध जीवों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, पर दुखे दुखी महान्त स्वभाव यही तारित पामर आपनार काज नहीं जान तार घर। जो महंत व विशेष वैष्णव भक्त होते हैं नारद मुनि जैसे, तो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए भ्रमण करते हैं, आपनार काज नहीं, उनके स्वयं कोई कार्य नहीं है, लेकिन बुद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए घर घर में जाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का बुद्ध जीव की स्थिति को देखकर उसको सुधारने के लिए उपाय करते हैं। ये इनके स्वभाव है, महंत स्वभाव। यही तारिते पामर, पामर बने जब बुद्ध जीव ये संसार में जन्म मृत्यु चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति, इसको उद्धार करने के लिए प्रयास करते हैं। स्वयं का कोई कार्य नहीं होता, लेकिन दूसरे के हित साधन करने के लिए, सारे जगत के कल्याण के लिए भ्रमण करते रहते हैं। तो इसी प्रकार नारद मुनि भ्रमण करते करते ये महाराज प्राचीन बहिष्यत को मिले, लेकिन देखिए कि ये राजा ने कर्मकांड में लगा हुआ है। बहुत यज्ञ अनुष्ठान चलते रहता, लेकिन यज्ञ में कई पशुओं को बलि भी देते रहता है, कई अश्वमेध राजसूय आदि यज्ञ करते रहता, लेकिन जीवन का असली लक्ष्य क्या इसको पता ही नहीं है। और लोग बड़े प्रशंसा की कह रहे कि राजा बड़े धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, बहुत यज्ञ करता है, ब्राह्मण को दान देता है आदि, इस कर्म में उसकी प्रशंसा मिल रहा था। लेकिन नारद जी देखे कि ये प्रकृति में अज्ञानी है, ऐसे कर्मकांड के माध्यम से कहां तक जा पाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा स्वर्गलोक तक व ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है। जब तक ये विशुद्ध भक्ति नहीं करेगा, तब भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़े दयार्द हृदय में नारद मुनि ने कुछ सोचे कि इस व्यक्ति को कैसे सुधारना है, इनके मन में बड़ा दया हुआ। तभी उन्होंने पुरंजन की कहानी कहे, पुरंजन की एक रूपक बनाकर भाई कहानी बनाकर वो राजा को समझाने के लिए प्रयास किए। इस चौथा स्कंद की 25वां अध्याय लेकर अभी 29वां अध्याय तक के 6 अध्याय में वो महाराज पुरंजन को समझाए। ये पहला जो 4 अध्याय में 25, 26, 27, 28 4 अध्याय में उन्होंने ये रूपक बा कहानी, पुरंजन की कहानी को बोलकर समझाए। लेकिन ये सारे कहानी को जो नारद जी ने समझाए, इसको समझने के बाद इस अध्याय के प्रारंभ से ही प्राचीन वैश्यत कह रहे कि प्राचीन वैश्यत ने उत्तर दिया है, स्वामी हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूपक आख्यान का सारांश पूर्णतया नहीं समझ सके। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्म में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझ पाया, आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ में आया। और प्राचीन भविष्य को ये प्रकृति में समझ में आता था कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे थे कि सब कुछ त्यागने के लिए, किसको, संसार के ये जो मोह को त्याग कर भगवान की विशुद्ध भक्ति करने के लिए समझ रहा था व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो तुरंत तैयार नहीं थे त्यागने के लिए। नारद जी ने इनको समझाया कि भाई देखो पुरंजन की कहानी है, पुरंजन पुरुष था, राजा था, लेकिन वो पुरंजन के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण अंत समय में पुरंजन अपने स्त्री की चिंतन करके शरीर त्यागा, तो अगला जन्म फिर इसको स्त्री का मिल गया है। और वो सब बताए, सारे इसको समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत ही संसार को त्याग करने के लिए तैयार नहीं था। कह रहा कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, जो आप जैसे विशुद्ध भक्त है जो केवल भक्ति में लगे हुए हैं तो बात को समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे विषयी व्यक्ति संसार में फंसे हुए हैं, कर्मकांड में लगे हुए हैं, हम कैसे इसको कैसे समझें, इसको थोड़ा और खोल कर बताइए। इसलिए नारद जी ने इस अध्याय में वो जो रूपक बोले थे पहले 4 अध्याय में जो समझाए थे पुरंजन की कथा को, इसको खोल कर बता रहे हैं कि इसका लक्ष्य क्या है, क्या कहना चाहते नारद जी है? इन्होंने कहना चाहते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। बोले नारद जी ने उसको, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य कर्मकांड के माध्यम से स्वर्गों की प्राप्ति वा पितरों की पूजन करके पितृलोक को प्राप्ति, या ये नहीं है मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की विशुद्ध भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त करना। जैसे प्रभुपाद ने कोट करते तात्पर्य में कि अगले श्लोक में और इसमें भी थोड़ा सा आवाज दिए हैं कि जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या मद्याजनो जानती अपिमाम। जो भूत प्रेतों को पूजन करते भूत प्रेतों को प्राप्त करते हैं, जो देवताओं को पूजन करते देवताओं के पास जाते हैं, पितरों को पूजन करने वाले पितरों के पास जाते हैं, जो मेरे भक्त विशुद्ध अनन्य भक्ति योग से मेरी पूजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो इसलिए नारद जी ने यही इनको समझाना चाहते थे। और पिछले श्लोक में 46 नंबर श्लोक में नारद जी ने क्लियर कहे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है विशुद्ध भक्ति। भक्ति के अला दूसरे कोई भी मार्ग में कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है, इसका कोई दूसरे लक्ष्य नहीं होता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल भगवान को प्राप्त करना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर महान वैष्णव आचार्य कवि उन्होंने कहते कि ज्ञान कांड कर्म कांड सकली विशेर भंड अमृत बलिया जेहू खाए नाना जोनी सही फिरे कदर्ज्य भक्षण करे तार जन्म अधपते जाए। कहते कि ये कर्मकांड जो साधारण अज्ञानी व्यक्ति ही कर्मकांड को और ज्ञानकांड को आश्रय कर लेता है। कर्मकांड की आधार क्या होता है? कर्मकांड को किस लिए व्यक्ति अपनाता है? इंद्रिय तृप्ति के साधन। कर्मकांड में यही कहा गया कि इस विशेष देवता को पूजन करो, संतुष्ट करने से तुमको ये इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगा। रोग से मुक्त, रोग व्याधि ग्रस्त हो तो सूर्य को पूजन करो। लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी को पूजन करो। बाधा विघ्न से मुक्त होने के लिए गणेश को पूजन करो। पति पत्नी, सुंदर पति या सुंदर पत्नी चाहिए, उमाशंकर को पूजन करो। ऐसे बताया गया कर्मकांड। भिन्न भिन्न देवताओं को प्रसन्न करके यज्ञ में आहुति देकर इंद्राय सुहा वरुणाय सुहा ऐसे करते करते केवल इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करना, ये कर्मकांड है। और ज्ञानकांड, जो ज्ञानी व्यक्ति वो केवल स्पेकुलेशन करते करते चिंतन करते करते मैं ब्रह्म हूं या ब्रह्म नहीं हूं ये चिंतन करके अंतिम लक्ष्य उनका होता है कि ब्रह्म में लीन हो जाना, साजुज्य मुक्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। लेकिन ये दोनों प्रकार के व्यक्ति जो कर्मकांड में लिप्त रहते हैं, जो ज्ञानकांड में भी लिप्त रहते हैं, ये दोनों नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि विष रभांड। ये तो बाहर से दिखाई पड़ता अमृत जैसा, लेकिन ये विष है, जहर है। क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य जीवन की जो लक्ष्य भगवत प्राप्ति वो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कर्मकांड और ज्ञानकांड ये आश्रय करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से जो मूल समस्या है नाना जोनी सही फिरे, अन्य बार बार जन्ममृत्यु चक्र में जो फंसना, जो मूल समस्या है जन्ममृत्यु से मुक्त होना, उससे मुक्त नहीं हो पाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्र है इससे मुक्त नहीं हो पाता है। इससे मुक्त होने के क्या उपाय है? जब ही भगवान की अनन्य भक्ति करेगा, भगवान की भजन करेगा, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति को आश्रय करके जो ज्ञान और कर्म से मुक्त होकर निर्विशेष मुक्ति की इच्छा से तथा सकाम कर्मकांड के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से जो मुक्त हो जाता है, अविशुद्ध भक्ति को आश्रय करता है, एकमात्र जीवन के लक्ष्य होता है भगवान विष्णु व कृष्ण को प्रसन्न करना, उस व्यक्ति ही जीवन का लक्ष्य को हासिल कर लेता है, अर्थात जन्ममृत्यु चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। उसी बात को आज के श्लोक में नारद मुनि समझाते हैं कि व्यक्ति क्यों ऐसे कर्मकांड और ज्ञानकांड में फंसा रहता है, क्यों इसने इस प्रकार अन्य अन्य देवताओं को पूजन करता है, क्यों उसने स्पेकुलेशन बा ज्ञान के आधार पर मायावादियों की तरफ चिंतन करते करते फिर साजुज्य मुक्ति को क्यों इच्छा करता है, इसकी रहस्य क्या है? तुरंत नारद मुनि कहते कि स्वं लोकं न विदुष्टे। इसके कारण है कि स्वं अर्थात अपना निजी लोक अर्थात घर को वो नहीं पहचानता है। हमारा एक असली घर है जिसको प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में, वो घर कौन सा है? जो बद्ध जीव है इसको पहचाना नहीं, जो कर्मकांड और ज्ञानकांड से लिप्त रहता है उसको ये ज्ञान पता नहीं कि हमारा प्रकृति में असली घर कहाँ है, कहां हमें नित्य निवास करना है। मैं स्वंग लोकं न विदुष्टे जानते नहीं है, स्वंग लोक हमारा अपने लोक कौन सा है, अपना निजी लोक अर्थात घर, स्वयं का निज घर को वो पहचाना नहीं, भूल गया, घर को वापस नहीं जाना चाहता है। और वो घर कहां पर रहता है ना, वही स्व लोकं न विदुष्टे वही, ये अपने घर को व अपने लोक को नहीं जानता है। जत्र देव जनार्दन, वो लोक कौन सा है, जहां भगवान जनार्दन कृष्ण या विष्णु निवास करते हैं, वही हमारा अपना घर है, वही हमें जाना और भगवान के साथ रहना, भगवान की सेवा को प्राप्त करके ये जीवन का लक्ष्य है, नित्य धाम में जाना और उन्हीं के भगवान के साथ में ही रहना। और जो अज्ञान के वशवर्ती होकर जीव इसको भूल गया, कृष्ण ते भूलिया जीव, भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झापुड़िया धरे। तो अपने घर में जाकर जो अपना स्थिति, असली स्थिति क्या है, कृष्ण जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, कृष्ण की नित्य सेवा करके ही वो आनंद को लूट सकता है, लेकिन उसको भूल गया, स्वयं घर को भूलकर वो इस भौतिक जगत में अन्य घर की ढूंढ कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, सोच रहा कि ये अच्छा है, इधर अच्छा सुख शांति मिल सकता है, ऐसे अन्य अन्य लोक से भ्रमण करता है। श्रील प्रभुपाद जी ने जब देखे कि आज की संसार में वैज्ञानिक लोग इस प्रकार अन्य अन्य लोक में जाने के लिए सब रॉकेट के निर्माण करते थे, और सबसे पहला जो विमान, सबसे पहला रॉकेट रशिया से भेजा गया था, कौन सा वो वालेंटिना तेरेस्कोवा और कोई थे दो यात्री, जो पहले बार गागारिन, यूरी गागारिन पहले गए थे, तो प्रभुपाद जी ने उसको देखा, देखकर उस समय प्रभुपाद जी राधा दामोदर में रहते थे, तो उन्होंने तुरंत एक किताब लिखा, क्या नाम था किताब का, इजी जानी टू अदर प्लैनेट्स, प्रभुपाद जी ने लिखा किताब। तो उसी बार में तात्पर्य में प्रभुपाद ने आभास भी दिए हैं, इन मूर्खों को पता नहीं कि कैसे अन्य लोक में जाना, और सबसे उच्च लोक जो है, जो हमारा अपने घर है, निजी घर है, सो लोकंग जो हमारा निजी घर है, अपना घर है, वो वैकुंठ जगत में है। और प्रभुपाद ने कहते कि कई वैकुंठ जगत है, लेकिन उसकी ऊपर विशेष रूप में किसका धाम है, कृष्ण लोक है जो हमारा घर है, वो निजी घर है, यदि वो कई वैकुंठ लोक भी है, लेकिन उसकी परे। और कहते कि प्रत्येक भक्त की कर्तव्य कि उस धाम को खोज करें, अपना घर को खोज करें, वो घर कहाँ है, आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन के नाम से जो जाना जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। आराध्य देव ब्रजे सतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता श्रीमत् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदरनापरः। जो गौड़ीय वैष्णव है उनकी ये सिद्धांत है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पादे श्लोक लिखते हैं, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु की मतामत क्या है, सिद्धांत क्या है, हमारा आराध्य देव कौन है, आराध्य देव ब्रजे सतनय, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही हमारा आराध्य देव है। यदि वो कृष्ण के कई नाम है, फिर चैतन्य महाप्रभु कहते कि कृष्ण शब्देर बहु अर्थ नामानी श्याम सुंदर जसोदानंदन दुई मात्र जानी। महाप्रभु कहते कि कृष्ण शब्द की बजी यदि कई विष्णु का तो कई नाम है, लेकिन इसकी बेले फिर यदि कृष्ण का नाम भी आपको समझना चाहते कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है। गौरांग महाप्रभु कहते कि कृष्ण शब्द का सिर्फ दो अर्थ में स्वीकार करता हूं, वो दो अर्थ, दो ही नाम केवल स्वीकार करता हूं, दो अर्थ क्या है, जसोदानंदन श्याम सुंदर, जसोदानंदन देवक माने जिसको माँ जसोदा की जो लाला है, और जो राधा रानी की प्यारा है, जिनको राधा रानी जिसको श्याम सुंदर कहकर पुकारती है, ये दोनों को, यही दोनों नाम स्वीकार कर, ये सबसे प्यारा नाम है भगवान का। तो इसलिए महाप्रभु कहते कि आराध्य देव ब्रजेशतन है, हमारा घर गोलोक वृंदावन है, और हमारा आराध्य देव कौन है, ब्रजेशतन है श्री कृष्ण, कृष्ण ही हमारा आराध्य देव, आराध्य देव ब्रजेशतन है तद्धाम वृंदावनम, उसी प्रकार उनके धाम भी हमारा आराध्य स्थली है। भगवान कई रूप में रहते हैं वैकुंठ जगत में, और साथ साथ स्वयं रूपे गोपवेश आमी गोप ज्ञान वासुदेव क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय ज्ञान। फिर भी महाप्रभु ने आगे कहते कि हमारा आराध्य देव कैसे है, वो कैसे है कृष्ण, कैसा न स्वयं रूपे गोपवेश। आमी गोप ज्ञान, जो ओ भगवान हमारा राज्य है, जो अपने को यही अभिमान रखता है। क्या अभिमान रखता है? मैं नंद की लाला हूं, जसोदा की दुलाला हूं, मैं गोप बालक हूं, वृंदावन विहारी हूं, ऐसे अभिमान जिस कृष्ण में रहता है वो हमारा राज्य देव है। वासुदेव कृष्ण जो सोचता है कि क्या वासुदेव क्षत्रिय वेश, आमी क्षत्रिय ज्ञान, जिसके पास में एक ज्ञान रहता कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं वासुदेव के पुत्र हूं, मथुराधीश हूं, द्वारकाधीश हूं, वो नहीं है। यदि कृष्ण का भी गोलक वृंदावन में तीन पार्ट है, मथुरा, द्वारका और वृंदावन, तो महाप्रभु कहते कि वो वृंदावन में जो रहने वाला जो कृष्ण, वो नंद की लाला, जसोदा दुलाल, वो हमारा आराध्य है। रूप गोस्वामी ने इसलिए जब नाटक लिख रहे थे, दो नाटक लिखे हैं, ललित माधव और विदग्ध माधव, उन्होंने सबकी पूरा मथुरा वृंदावन द्वारका सभी लीला को एक ही ग्रंथ में लिखना चाहते थे, रूप गोस्वामी प्लान किए थे। लेकिन गौरांग महाप्रभु ने इनको जब देखे, हरिदास ठाकुर के भजन कुटी में वो आए थे, मिले तो कहे कि रूपो कृष्ण को है, कृष्ण को बाहर न करह ब्रज हईते, ब्रज छाड़ी कृष्ण कभू न जाए कहाँ थे। लेकिन रूपो ब्रज को, ब्रज के बाहर निकालो मत, किसको, कृष्ण को, तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, ब्रज के बाहर नहीं जाता है। वृंदावन परित्यज्यं पादमेकं गच्छति, वो एक पैर कहीं नहीं जाता, इसलिए कृष्ण को वृंदावन से बाहर, हमारा जो आराध्य देव, इसको बाहर मत निकालो, उसे वृंदावन में ही रखो। इसलिए तुम दो नाटक लिखो, एक नाटक नहीं, एक वैदेव विदग्ध माधव जो वृंदावन की लीला, और पूरा लीला मथुरा द्वारका की लीला को सेपरेट पुस्तक में लिखो, ललित माधव है, दोनों को एक साथ मत मिलाओ। ब्रजते कृष्ण को ब्रजते बाहर न करिह ब्रज हैते, ब्रज छाड़ी कृष्ण कभू न जाए कहां थे, महाप्रभु ने कहा ब्रज छाड़ के कृष्ण कहीं नहीं जाते हैं। तो इसलिए ये महाप्रभु ने कहते कि जैसे हमारा सिद्धांत, ये हमारा आराध्य देव, यही घर है गोलोक वृंदावन, जहां पर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण निवास करते हैं, गोप कुमार की कथा आता है, इसलिए सनातन गोस्वामी बृहत भागवत अमृत का रचना करते हैं, गोप कुमार की कथा कहते हैं। गोप कुमार गया, गोप बालक था और भाव उसके सखा साख्य रस के कृष्ण के साथ था, इसलिए वो सारे आध्यात्मिक जगत भ्रमण करते करते गया, चले ये तो जगन्नाथपुरी में राजा बन गया, बड़े कहानी है। तो फिर वहां से फिर स्वर्ग में गया, इंद्र के पास में उपेंद्र को देखा, किसको, वामन देव को देखा, वहां भी मन इसका तृप्त नहीं हुआ, देखता क्योंकि वो चाहता, सोचता था कि मेरे प्रभु तो ऐसा ही है, जो आए आएगा मुझे आलिंगन करेगा साक्ष्य के सखा के रूप में है, वो तो ऐसे नहीं, ऐश्वर्य भाव है। तो वहां से फिर स्वर्ग से फिर जाकर विश्व विराट रूप को ब्रह्मलोक में दर्शन किया, वहां भी शांत नहीं हुआ, फिर शंकर जी के पास गया, फिर शंकर जी ने इसको भेज दिया ऊपर है वैकुंठ जगत में, वैकुंठ जगत में विष्णु को भी देखा, फिर भी बड़ा ऐश्वर्य रूप देखकर वो प्रसन्न नहीं हुआ। फिर गोपाल की मंत्र चिंतन करते रहा, गोपाल मंत्र जप रहा था, गुरु जी ने इसको गोपाल मंत्र दिया था। आस्ते चलते चलते फिर साकेत धाम में भी पहुंच गया, साकेत धाम में वो बंदर लोग आकर इसको बांसुरी छीन ली, बांसुरी पकड़ा था, गोप बालक वेश में रहता था, और वहां पर भी हनुमान जी ने इसको कितने प्रचार किए, तो वो प्रचार में शांत नहीं हुआ। भगवान रामचंद्र जी ने इसके भाव को समझ कर कभी कभी धनुष बाण रख देते थे और बड़ा खुश हो जाता था, सोचता कि ये मेरा प्रभु है। लेकिन सब समय तो ऐसे नहीं रह सकते, वो राजा राजभेष फिर मुकुट पहन लेते, जब धनुष बाण धारण कर लेते फिर दुखी हो जाते हैं। तभी रामचंद्र जी ने कहे कि देखो ये इधर सुखी नहीं हो रहा है, इसको भेजो कम से कम और ऊपर द्वारकाधीश की द्वारका में भेज दो। वो एक भक्त है जो कि दोनों लीला में भाग लेता है, कौन है, जाम्बवान, जाम्बवान को रामचंद्र जी ने बोला है, बोलाकर बोले कि इसको द्वारका में ले पहुंचा दो, ये इधर सुखी नहीं हो रहा, यहाँ साकेत धाम में कोई दुखी नहीं, लेकिन ये एक व्यक्ति है, इसको यहाँ पर भी दुख अनुभव हो रहा है। चले द्वारका गया, लेकिन द्वारका में भी भगवान ने उसके लिए कभी कभी द्वारकाधीश वेश में मुकुट धारण करते तो उसको अच्छा नहीं लगता, नव वृंदावन में कभी कभी उसको देखता था भगवान के रूप को, खुश रहता था। लेकिन फिर द्वारकाधीश कहे कि नारद जी ने एक बार भ्रमण करते करते पहुंचे, नारद जी कहे कि इसको लेकर पहुंचा दो ब्रज में, यहाँ पर भी शांति नहीं हो रहा है इसको। इसलिए जब ब्रज में पहुंचा नंद भवन में, तभी भगवान गाय चराने के लिए गए थे, बाहर में थे, और उनको पता लगा कि मेरे मित्र आया मुझे मिलने के लिए। भगवान ने उस दिन सारे मित्रों को पीछे रखकर भागते रहे, अकेले भागे हैं सब लोग, क्योंकि इसको मिलने के लिए, किसको, गोप कुमार को। अब कई बार आप फोटो देखेंगे दोनों आलिंगन कर रहे परस्पर को, कौन, कृष्ण और गोप कुमार आलिंगन कर रहे हैं परस्पर को, है भगवान वही चाहता था। भगवान मेरी ऐसे ही प्रेम, अरे ऐसे ही प्रेम कौन दे सकता है भक्तों को, केवल भगवान श्री कृष्ण के अलावा दूसरे नहीं। साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये तीनों रस में जो भक्त हैं ये श्री कृष्ण को ही समर्पित रहते हैं। दास्य भाव की प्राधान्यता वैकुंठ जगत में है, जो दास्य रस के भक्त हैं वैकुंठ जगत में विष्णु की पूजन करते, कृष्ण भगवान रामचंद्र जी के पास में दास्यता के ही प्राधान्य है। यदि वहां पर कभी कभी साख्य भाव के दिखाई पड़ता है, जो साख्य भाव के कुछ भक्त रहते रामचंद्र जी के, कौन विभीषण है, सुग्रीव है, इनके साख्य भाव से भगवान के साथ माना जाता है, लेकिन फिर भी वो संभ्रम साख्य है, संकुचित साख्य, वो कभी भगवान को ऐसे आलिंगन करते कभी कभी, लेकिन भयभीत रहते कि पैर कभी टच हो जाएगा, कहां भगवान के शरीर में पैर लग जाएगा, इस भय से बड़ा थोड़ा दूर में रहकर आलिंगन करते हैं लेकिन भयभीत रहते हैं। लेकिन कृष्ण के सखा ऐसे नहीं है, कृष्ण के साथ में जो साख्य रस में रहने वाले हैं वो विश्रम्भ साख्य, जो प्रकृति में साख्य रस है, भगवान की तो सखा तो ऐसे होते ब्रज में, आ तो खेलते साथ में भगवान के साथ में खेल कूद करते हैं, एक सज्जा पर सोते हैं, एक के झूठन दूसरा खाता है, भगवान की कांध पर चढ़ जाते हैं, गोप बालक हैं, तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सम है, खेलते कभी कभी कृष्ण और कभी जो कुश्ती कसरत खेलते दो भाग हो जाते हैं, बलराम जी के एक पक्ष एक कृष्ण के, कुछ लोग बलराम जी के साइड में कुछ लोग कृष्ण की साइड में, साधारण तो कृष्ण श्रीराम के साथ में कुश्ती कसरत खेलते हैं, तो खेल में कभी कभी श्रीराम का जीत हो जाता, भगवान हार जाते हैं जानबूझकर, यदि वो जीता है लेकिन भक्तों के पास में पराजय हो जाते हैं। अब पराजय हो जाने के पर जीतने वाला को अपने कांध में बैठाकर कई किलोमीटर तक घुमाने का जो शर्त रहता है, तो भगवान कहते कि देखो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कन्हैया हूं, छोटा सा हूं है, इतनी मेरा शरीर इतने कोमल है, मैं नंद की लाला हूं, ये काम नहीं करूंगा, मैं तुमको कांध में बैठा नहीं सकता हूं। तो फिर दो बच्चे आते हैं पकड़ लेते हैं, बोले क्या हो गया, तो बड़ा हो गया नंद की लाला हो गया, तो आज नहीं करेगा, काल तुमको खेल में शामिल नहीं करेंगे, भगवान डर जाते थे। दो बालक पकड़ते तीसरे कान में चढ़ता है, तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सम, वात्सल्य भाव से भी माँ यशोदा ने अति तुच्छ ज्ञान करे लालन पालन, माँ जो है यशोदा अति तुच्छ ज्ञान करता, भगवान थोड़ी समझते हैं, ब्रजवासी कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, तो उस देव कैसा भगवान है, कोई बोलता है कि तुम्हारा लाला भगवान है, कहता है ये भगवान ऐसा ही होता है, कोई माखन के लिए रोता है, है? माखन के लिए रोता है, झूठ कहता है, लोगों के घर में चोरी करता है, कितनी क्या करता है कोई ठिकाना नहीं, वैसे भगवान होता है, ब्रजवासियों को विश्वास नहीं होता कि ये भगवान है, ये ब्रज की धारा भावना है। और चैतन्य महाप्रभु कही कि वही हमारा घर है, कौन सा घर है, वृंदावन। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे, यदि वो कई वैकुंठ लोक है लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव है इनको विशेष रूप में गोलोक वृंदावन का ही खोज करना चाहिए, जो अपना निजी धाम है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण गोप बालक वेश में रहते हैं, स्वयं रूपे गोपो वेश आमी गोपो ज्ञान, ये ज्ञान जहां पर भगवान की रहता, मैं गोप बालक हूं, बालक हूं, लाला हूं, नंद की लाला हूं, यशोदा दुलाल हूं, ये हमारा आराध्य देव है। और उसी वो जो श्लोक में रहते हैं वो स्वयं लोक अपने लोक को ही ढूंढ करना चाहिए, वहां जाना, वहां जाने के प्रोसेस क्या है, अभी चलो हमको पता चल गया कि वो हमारा स्वधाम है, वह वही धाम में हमें रहना है, भगवान के साथ में किसी भी रस में, साख्य दास्य वात्सल्य माधुर्य, कोई भी रस में जो भक्त वहां पर रह सकता है, जैसे उपदेश समत की वो श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखते हैं, तन्नाम रूप चरिता देशु कीर्तनानु, श्लोक क्या, तन्नाम रूप चरिता देशु कीर्तनानु, अभी पर श्लोक क्या नहीं आ रहा, तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलमिति उपदेश सारम। सारे उपदेश के सारांश गुरु गोस्वामी कहते कि प्रकृति में उसी भगवान के धाम में रहकर, वृंदावन धाम में रहकर, तदनु रागी जनानुगामी, जो भक्त ब्रजवासियों के अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त किसी भी रस में हो सकते हैं, जिनको माधुर्य रस में भक्त है तो उन्होंने राधारानी और अन्य गोपियों के अनुसरण कर सकते हैं, ललिता विशाखा बारूप मंजरी अनंग मंजरी आदि मंजरियों के उनकी अनुसरण कर सकता है, जो साख्य रस की भक्त सुबल सिदाम आदि सखाओं के अनुसरण कर सकता है, जो वात्सल्य रस के भक्त तो माँ यशोदा नंद के अनुसरण कर सकता है, जो दास्य रस की भक्त वो चित्रक पत्रक और रक्तक आदि भगवान की जो दास्य रस के जो भक्त है वृंदावन में उनके अनुसरण कर सकता है, जो शांत रस की है तो वृंदावन के जंगल के गाय और पशु पक्षियों को अनुसरण मयूर आदि के अनुसरण कर सकता है। तो इसलिए कृष्ण भक्त किसी भी रस में कृष्ण के साथ भक्ति कर सकते, कृष्ण इसलिए पूर्ण भगवान है, संपूर्ण पूर्ण रूप में भगवान भक्तों की सभी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। रामचंद्र के पास में भी आप सभी इच्छा आपकी नहीं पूर्ण करेंगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा लंघन नहीं करते हैं। दंडकारण्य के ऋषि सोचे कि रामचंद्र जी को आलिंगन करेंगे, संभव हुआ नहीं, कृष्ण पूर्ण किए भगवान। वही सब ऋषि गोपी बनकर आए दंडकारण्य के ऋषि, यहां कुब्जा ने कुब्जा है कौन, पहले क्या था रामलीला में, सुपर्ण का था, सुपर्ण का चाहता था रामचंद्र के साथ है, उनके इच्छा को पूर्ण करने के लिए काम वासना को, रामचंद्र गए कि नहीं, और लक्ष्मण तो इसको नाक कान काट के छोड़ दिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास फिर इसको इच्छा को पूर्ण किए, कुबड़ा कुब्जा बन के आई तो उसकी इच्छा था, तो भगवान सभी की इच्छा पूर्ण कर देते हैं। कृष्ण किसी प्रकार की व्यक्ति उनके शरण में आता है, किसी प्रकार की इच्छा लेकर सभी की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, भक्तों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, कौन भगवान, आपने सब कुछ त्याग कर भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारा जो घर है, महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन हमारा आराध्य देव, तद्धाम भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही है, आराध्य देव ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। इनको प्राप्त करने के उपाय क्या है, ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, जैसे ब्रजवासी लोग ने विशेष करके गोपियां ने जिस मार्ग में भगवान को प्राप्त करने की प्रयास किया है उसी मार्ग के अनुसरण करना, ये गौड़िया वैष्णव की रीति है, ये मार्ग है, है? है? तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदाजना भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदाजना। ये मार्ग गोपियां गा रहे गीत कि भूरिदाजना अर्थात तो वही प्रकृति में महावदान्य है, सबसे बड़ा दानी वही है संसार में, कौन है, जो भगवान की कथामृत को दान करता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, त्रिताप क्लेश में जो जीव इस संसार में कष्ट को भोग रहा है, आधिभैतिक आधिदैविक आध्यात्मिक क्लेशों को भोग रहा है, उसके लिए महोषधि क्या है, उसके उद्धार कैसे हो सकता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये तप्त जीवन ये त्रिताप क्लेश को भोगने वाले के लिए आपकी जो कथामृत है ये महोषधि के समान है। कभी भी रीड़ितम, इसको विशेष महान विद्वान व्यक्ति ने घोषित किया है, कवि अर्थात विशेष पंडित दार्शनिक इसको घोषित करते हैं कि कभी भी रीड़ितम कलमसापहंगे, समस्त कलमसों को भी नाश करने वाला है आपकी कथा अमृत, जो पान करता है, जो इसको पान करता का अर्थात कथाओं को किससे पान किया जाता है, कान से, साधुओं को देखा जाता है कान से, दुनिया में और सब चीज को आंख में देखते हैं लेकिन साधु को देखना है तो कान से देखा जाता है अर्थात श्रवण करके ही है? उसी बात को प्रभुपाद ने लिखे तात्पर्य में, जो भगवान के धाम जब हमको पता चल गया है, गोलोक वृंदावन हमारा धाम है, वही हमारा घर है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने अंतरंग भक्तों के साथ में रहते हैं, वही हमें जाना है, तो जाने का रीति क्या है, कैसे शुभारंभ करेंगे, श्रवण से, तवा कथामृतम तप्त जीवनम। ये जो त्रिताप क्लेश में भोगा जो भोगने वाला जो बद्ध जीव कथा को श्रवण से ही शुभारंभ करे भक्ति का, तब कथा कभी भीड़ितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम, इस कथाओं को श्रवण करने से ही सभी प्रकार के मंगल और कल्याण साधन होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, समस्त प्रकार के सौभाग्य की वो अधिकारी बन जाता है। श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदाजना, ये प्रकृति में महावदन दानी है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब धाम हमको पता चल जाए कि गोलोक वृंदावन पर धाम है तो उस धाम में पहुंचने का फिर उपाय क्या है, कहते कि श्रवण कीर्तन है, क्या श्रवण कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने भागवत की 12वें स्कंद के श्लोक कोट करते हैं, कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। कहते कलिजुग सारे दोषों के सागर है, सभी दोष ही संसार इस युग में है, कलिजुग के मनुष्य प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन जुगे जना मंदसु मंद मतयो मंद भाग्य उपादृत प्रारंभ से ही, कह दिए सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए इस कलयुग के मनुष्यों के लिए जो इतनी अभागे हैं, मंद मति वाले हैं, दुर्भागा है, इनकी उद्धार कैसे हो सकता है? तो इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं 12वें स्कंद में, ये जो जीव सारे दोषों के सागर है, निधि का अर्थात सागर, कलयुग सारे दोषों के सागर हैं, लेकिन एक महान गुण है। वो महान गुण क्या है? कीर्तनात् एवं कृष्ण से, केवल भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन करके ही इस कलयुग के मनुष्य अन्य युग के लोगों के जो सिद्धि को प्राप्त कर सकते। सत्य युग में जो कृत्य च ध्यायत विष्णु त्रेतयांग जजते मुखई द्वापरं परिचर्यांग कलौ तत् हरि कीर्तनात्। वही भी भागवत के श्लोक, ये भी 12वें स्कंद में बता गया कि ये जो चारों युग में युग धर्म कहा गया, कैसे मनुष्य उद्धार होंगे? ना सत्य युग के मनुष्य ध्यान के माध्यम से, त्रेतया में यज्ञ के माध्यम से, द्वापर में विग्रहों की अर्चना करके, और कलयुग में हरि कीर्तनात्, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में कोई दूसरे गति नहीं है, दूसरे गति नहीं है, दूसरे गति नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य अंत में इसी को लिखते हैं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र की जप और कीर्तन करके ही इस कलिहत मनुष्य भगवान की धाम को बा अपने लोक जो स्वयं घर को वापस जा सकता है। यही कलयुग में एकमात्र उपाय है, कोई दूसरे उपाय नहीं है। इसलिए निमि महाराज को उपदेश देते हुए उन्हें कहते हैं करभाजन ऋषि, कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधसा। जो सबसे सुमेधसा बुद्धिमान मनुष्य इस कलयुग में, ये कृष्ण जो स्वयं कृष्ण है, लेकिन अकृष्ण अभी कृष्ण वर्ण में नहीं प्रकट हुए हैं, जो राधारानी के वर्ण और भाव को अंगीकार करके प्रकट हुए, वो कौन है? भगवान गौरांग महाप्रभु। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण संग पांग, वो अकेले अकेले नहीं आए हैं, सांग पांग अस्त्र पार्षद ये सबको लेकर आए हैं, नित्यानंद गदाधर अद्वैत शिवास आदि सभी पार्षदों के साथ में लेकर, अस्त्र उनके हाथ में क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग की जो मनुष्य को उद्धार करने के लिए नारायण अस्त्र के साथ है। एक तात्पर्य प्रभुपाद लिखते कि जो हरे कृष्ण मंत्र कैसा है, नारायण अस्त्र के समान है, ये कभी विफल नहीं होता है। इसको जब भेदा किसी के ऊपर प्रयोग किया जाता है, निश्चित रूप में सफलता को हासिल करता है। तो इसलिए कलयुग की मनुष्य ये नारायण अस्त्र रूपी हरे कृष्ण महामंत्र की केवल जप और कीर्तन करके ही उस परम सिद्धि को, भगवान के धाम को वापस जा सकता है। इस युग में और कोई उपाय नहीं है, इस मनुष्य इस युग में और कुछ नहीं कर सकता, ध्यान कर सकता न, यज्ञ न श्री विग्रह की अर्चना ठीक से कर सकता है। अल्प आयु से 100 साल उम्र है कलयुग की मनुष्यों की, द्वापर में 1000 साल था, त्रेतया में 10,000, सत्य युग में 1,00,000 साल तक लोग जीवित रहते थे। इसलिए उस युग में तपस्या युग धर्म था सत्य युग के, धर्म के 4 पैर मौजूद थे सत्य युग में, सत्य शौच दया तप चारों के चारों मौजूद थे। त्रेतया में 1 पैर घट गया, कौन सा पैर घटा कौन सा पैर? ध्यान नष्ट हो गया। ध्यान कैसे नष्ट होता? नशा करने से, नशा करने से ध्यान नष्ट हो जाता। सत्य के जो धर्म के 4 पैर से धर्म नष्ट ने सत्य नष्ट होता जब भी नशा करते हैं, सॉरी ध्यान नष्ट होता है जब भी नशा करते हैं। जब भी अवैध संग करते तो पवित्रता नष्ट हो जाती है, जब भी हम मांसाहार करते तो दया नष्ट हो जाता है, जुआ सटा खेलने पर सत्य नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इस कलयुग में केवल थोड़ा बहुत सत्य बचा हुआ है, फिर भी जुआ सटा तो खेलते रहते हैं लोग, लेकिन आस्ते आस्ते केवल कलयुग में धर्म एक पैर में केवल खड़ा है। भागवत के प्रारंभ से परीक्षित महाराज ने वर्णन किया, वो कैसे देखे धर्म को, धर्म रूपी बैल एक पैर में खड़ा होकर कंप रहा था। तो इसलिए इस युग में इसलिए प्रभुपाद ने हमें सलाह देते कि कोई दूसरे मार्ग नहीं है। जो अल्पबुद्धिमान मनुष्य है वो अन्य अन्य उपाय के माध्यम से अन्य अन्य घर को जाना चाहते हैं, कोई स्वर्ग में जाना चाहता है, कोई ब्रह्मलोक में जाना चाहता है, कोई चंद्रलोक में जाना चाहता है, कोई ये सब, वही अल्पबुद्धिमान है। जो प्रकृत बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की विशुद्ध भक्ति करके ही, हरे कृष्ण मंत्र का ही जप और कीर्तन करके ही अपने निजी घर गोलोक वृंदावन को वापस जा सकता है। इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। संपूर्ण रूप में शास्त्र और गुरु के वचन में विश्वास करते हुए हमें नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र की जप और कीर्तन करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने ये विधि हमको दिया है, भगवान ने गीता में भी कहे यज्ञानं जप यज्ञ अस्मिन, जितनी प्रकार की यज्ञ विधि है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की जितने रीति है वो उसमें से श्रेष्ठ कौन सा है, जप, भगवान के नाम की जप। जब गुरु दिखा देता है इसलिए पहले कहता है कि सोलहमाला जपना। प्रभुपाद ने कहे कि प्रभुपाद जी पूछा गया सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन आपके सबसे पहला नंबर के इंस्ट्रक्शन क्या कहे, कहा यदि आप कहिए कि पहला कौन सा इंस्ट्रक्शन को गुरु का फॉलो करना चाहिए, तो चाहे और किसी भी परिस्थिति में आप दूसरे फॉलो नहीं कर पा रहे थे लेकिन सोलहमाला जप करना ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये इसको पहले कर लेना चाहिए सोलहमाला जप है। इसलिए जप करना साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए कीर्तन करना, स्वयं के कल्याण के लिए जप और सारा जगत को उद्धार के लिए कीर्तन। हरिदास ठाकुर ने, यही महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को पूछा कि हरिदास ये बद्ध जीव कैसे उद्धार होंगे संसार के, तो जो लोग कीर्तन हरि कीर्तन करते थे इनके उद्धार हो जाएगा हिंदू लोगों के, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं जो जवान है वो भगवान के नाम नहीं लेते, पशु पक्षी वृक्ष ये भी भगवान के नाम नहीं ले पाते, इनकी उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास कहे कि प्रभु आप मुझे परीक्षा करते हैं, तो सब कुछ आप ही जानते लेकिन मेरे मुख से बोलाना चाहते, आप जैसे बोला रहे मैं ऐसा ही बोलता हूं। कहे कि इसलिए नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय, कलयुग में नाम संकीर्तन ही परम उपाय है। जो भक्त एक साथ में महासंकीर्तन में निकलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि जिसके कान में भी प्रवेश करता है वो उद्धार हो जाता है। इसलिए नाम संकीर्तन के ही इस युग धर्म कहा गया इस कलयुग में, और इस नाम संकीर्तन माध्यम से इनके उद्धार होता है। और उसकी बात में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा श्रील प्रभुपाद जी ने आकर और इसको आगे बढ़ाने के लिए और एक कीर्तन दिया, कौन सा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कह के बृहत मृदंग है, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से कुछ लोग सुनते हैं और उनके उद्धार होता है, लेकिन जो हम जो पाश्चात्य जगत में जो पृथ्वी की कोने कोने में से पड़े हुए उनके कैसे उद्धार होगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद जी को राधाकुंड के किनारे पर ही यह उपदेश दिया था। जब प्रभुपाद ने भक्ति सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए आए थे राधाकुंड के किनारे पर मिले, तो भक्ति सरस्वती ठाकुर ने एक मृदंग की चित्र अंकित करके ही अंकित किया और अंकित करके प्रभुपाद जी को दिखाया, कहे कि ये बृहत मृदंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये बृहत मृदंग है, ये छोटा मृदंग में कीर्तन हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन हम नवर कीर्तन निकालते हैं, लेकिन ये बृहत मृदंग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब सारा विश्व में फैलेगा नहीं तब ये कृष्ण भावना में आंदोलन का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहे कि अभय यदि तुम्हारे पास में धन हो तो तुमको किताब छपाना है और इसके वितरण करना। इसलिए प्रभुपाद ने उसी निर्देशन को संपूर्ण रूप में निभाने के लिए पूरे जिन लाइफ टाइम प्रिपरेशन किए। प्रभुपाद ने बार बार कहते थे कि मेरी जीवन का सफलता की कोई दूसरे रहस्य नहीं है, एक ही रहस्य है, मैंने मेरी गुरु की निर्देशन को जीवन में संपूर्ण रूप में उतारने के लिए पूर्ण प्रयास किया, उसी से सफलता प्राप्त हुई। इसलिए कलयुग में ही जो कलियुगत मनुष्य को उद्धार करने के लिए प्रभुपाद कहते कि तात्पर्य में एक ही उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन जप और कीर्तन, साथ साथ दूसरों को कल्याण के लिए हमें नाम संकीर्तन करना चाहिए और पुस्तकों का वितरण करना चाहिए, इसी के माध्यम से ही सारा जगत के कल्याण हो सकता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसके? हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज जैसे आप बता रहे थे शुरू में कि कलयुग में लोग कर्मकांड में बहुत रुचि रखते हैं, पर कर्मकांड करने का कोई लाभ होता है क्या
है?
क्योंकि हमने सुना है कि कलयुग में मतलब जीवन में जो भी सुख आना है वो तो निश्चित होता है, तो फिर कर्मकांड का शास्त्रों में इतना ज्यादा व्याख्यान क्यों है, इसका क्या लाभ है, क्या कुछ लाभ होता है कर्मकांड का?
जो कर्मकांड के कोई लाभ नहीं, इसलिए मैं कहा कि नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहे, कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विशेष भांड, आप इसको अमृत सोचकर जो खाता है वो बार बार जन्म मृत्यु चक्र में भटकते रहता है, तो आपको जन्म मृत्यु चक्र में भटकते रहना है तो फिर कर्मकांड का आचरण करो है? इस एक जन्म से दूसरे जन्म एक अभी कभी कर्मकांड करके स्वर्गलोक में जाएगा, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति, प्रभुपाद जी सपोर्ट करते हैं, पुण्य क्षीण हो गया फिर मर्त्यलोक में आएगा, 84 लाख जोनि में भटकते रहेगा, तो यह अच्छा लगता तो आप कर्मकांड कर सकते हैं है? लेकिन यदि आप भगवत धाम में जाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते प्रॉब्लम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना, तो भक्ति करना है। यदि अन्य अन्य जोनि में आपको अच्छा लगता है कि भ्रमण करना, बार बार माँ के गर्भ में जाना, फिर वो यंत्रणा को सहन करना माँ के गर्भ में, बच्चा कैसे रहता है माँ के गर्भ में, धनुष आकृति होकर उल्टे है मुख और पैर ऐसा ही, लगा ऐसे यदि आपको भी रख दिया जाएगा एक घंटे में आने आधे घंटे के अंदर समाप्त हो जाओगे। लेकिन माँ के गर्भ में बच्चा ऐसे ही रहता है मल मूत्र पिंड है कि बीच में, और उस समय प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे निकाल दीजिए इसे, इसका अंदर से मैं भोजन करूंगा, लेकिन बाहर निकल आता तो फिर भूल जाता है। भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रही लो तुम्हें अविद्या भरे है, ये फिर भूल जाता है इधर आकर। इसलिए महाप्रभु ने आए और संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन किए, गौर निताय संकीर्तन के जनक है। आजान लंबित भुजौ कनका बदातो संकीर्तनाई कपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ दिजबरौ जुग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। ये करुणावतार है परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचंद्र आकर संकीर्तन आंदोलन की प्रवर्तन किए है इन बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए। और जो बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन आंदोलन में भाग लेता है, आज जो बुद्धि इसको स्वीकार नहीं करेगा भोगेगा, जन्म चक्र में भटकना अच्छा लगता है तो कर्मकांड को स्वीकार करेगा। यदि भगवत धाम जाना चाहता है अपने घर निजी घर को वापस जाना चाहता है, संग लोकं न विदुते वही जत्र देव जनार्दन, ये नहीं जानता है व्यक्ति इसलिए कर्मकांड करता है, ये श्लोक कह रहा है। तो अपने धाम को पहचाना नहीं कि अपने घर को अभी तक भूल गया है, अपने घर वो है जहां पर जनार्दन कृष्ण हमेशा निवास करते हैं, उस गोलक वृंदावन को भूलकर इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु चक्र से भटक रहा है। इसलिए इससे उद्धार होने के लिए मार्ग कहते कि हरे कृष्ण महामंत्र के श्रवण और कीर्तन।
हरे कृष्ण महाराज, महाराज धन्यवाद प्रणाम। महाराज जैसे कि आपने जो बताए जैसे कि भगवत धाम जाने के लिए हमको भक्ति का शरण लेना चाहिए, हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं, हम लोग जैसे कि जगन्नाथपुरी आते हैं, जगन्नाथपुरी की खास करके वो पूरी धाम वासी जो लोग हैं, हम लोग उनको अगर गीता के बारे में बोलते हैं और कुछ बोलते हैं भक्ति करना है, जप भी करना है, जो माला जप करना है, वो लोग बोलते विशेष करके तो पहले बोलते हैं हम तो गीता को तो हजम कर चुके हैं, हमको क्या जरूरत है हमको गीता,
आपको धाम में मैं समझ गया।
और वो बोलते इसके बाद वो लोग नहीं, मेरे कहने का मतलब है वो लोगों ने जप के ऊपर भी विश्वास नहीं करते, तो वो लोगों ने जो है मतलब अगर शरीर छोड़ने के बाद वो कहां जाते हैं, विशेष करके जगन्नाथ के पास रहते वो लोग,
भजन करी साधन करी मरते जान ले है प्रभुपद ने बंगाली में कहते हैं। साधन भजन कैसे करता है व्यक्ति, कब परीक्षा होता है, शरीर त्यागने के समय में है। और धाम में जो विशेष रूप में वास करते हैं कोई साधारण नहीं माना जाता, धामवासी कई जन्मों की तपस्या की बल पर वो फिर आए हैं धाम में, जो जन्म लेता है कोई ब्रज में जन्म लेता है, नवदीप में या जगन्नाथपुरी में जन्म लिया है, धामवासी बना है, तो इतनी आसान नहीं, उसे कई पूर्व जन्म की कर्मफल है, जगन्नाथ जी को कई जन्म से तपस्या किया तो अभी जगन्नाथ जी के चरण में उसको स्थान मिला है, उनको साधारण नहीं समझा जाता है। लेकिन फिर भी उनको प्रचार करने के एक ही माध्यम है केवल नाम संकीर्तन और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, वो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, ब्रजवासियों को भी ऐसा ही रूपा जन के केवल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है और नाम संकीर्तन, कीर्तन कराओ प्रसाद खिलाओ, शास्त्र पास्त्र सुनने के लिए वो नहीं तैयार नहीं होंगे। और कलयुग का जो धर्म वही है नाम संकीर्तन है, और जगन्नाथ जी के बड़े जो प्रिय होते हैं उनके जो पुजारियां होते हैं विशेष रूप में बड़े प्रिय होते हैं है? चेतन चेतन में कई कहानी आता है, पुंडरीक विद्यानिधि को थप्पड़ खाया, पुंडरीक विद्यानिधि जैसे महान भक्त है ब्रह्मानु की अवतार है, अब उनको भी जगन्नाथ बलराम आकर लगाए थे मुखी लगाए मुख में है, क्यों गए थे ओणम षष्ठी के दिन में जगन्नाथ मंदिर में गए और देखे कि ये मड़ुआ वस्त्र पहनाए जगन्नाथ जी बलराम को, डायरेक्ट वस्त्र इसको पवित्र नहीं किए हैं, इसको धोकर फिर आस्था से वो उनके जैसे रीति वैदिक रीति में नहीं ऐसे ही लाकर डायरेक्ट पहनाए ड्रेस है, अब थोड़ा समालोचना करके आए क्या ये पंडे लोग ऐसा ही है, है? भगवान को ऐसे मड़ुआ वस्त्र पहनाते तो स्वयं भी ऐसे ही पहनते और ऐसे आलोचना करके आए, तो सर्व दामोदर के साथ में ऐसे आलोचना करके आके सो गए थे, रात को आए कौन जगन्नाथ बलराम, क्या सोच रहा है तुम हमको, लकड़ी का विग्रह सोच रहा ना कि लकड़ी का सोच रहा है कि काठ का ऐसे रखा हुआ है, जब हम सेवा स्वीकार करते हैं तुम क्रिटिसाइज करने वाला कौन है, हम यदि सेवा स्वीकार नहीं करेंगे कोई हमारा सेवा कर सकता है, जो हम सेवा को स्वीकार कर रहे तुम कौन है क्रिटिसाइज करने के लिए है? एक गाल में जगन्नाथ एक गाल में थप्पड़ लगाए थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ है, ये कोई कहानी नहीं था, सत को सत गाल खुल गया था। सुबह जो वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी आए इनको बुलाने के लिए और दर्जा खटखटाए वो खोले, दर्जा खोले देखे सच को सत उन गाल खुला हुआ है, सच को खाए, एक सपना नहीं था केवल भगवान आगे लगाए इनको थप्पड़, इसलिए धामवासियों को समालोचना करना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम इनको प्रयास करें हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, बस उनके साथ युक्ति तर्क करना हमारा जो काम नहीं है।
ये हुई धाम में, जगन्नाथ धाम में अभी अभी एक भक्त था, अभी शरीर छोड़ा है, मतलब हो गया 4-5 महीना हो गया है। उन्होंने जिंदगी भर में जगन्नाथ जी का गान करते थे, जगन्नाथ जी के भजन गाते थे, लेकिन जब अंतकाल हुआ उनको 1 साल तक कैंसर बीमार में पीड़ित हो गया। तो एक भक्त ने पूछा, इन्होंने तो पूरे जिंदगी भर के भगवान का नाम लिए, उनको कैंसर क्यों हुआ? तो वो भक्त ने उनको कमेंट किया, नहीं नहीं, उनको भगवान चाहते उनको इसी जन्म में गोलोक धाम लेने के लिए। तो बोलते कुछ पुराना कुछ बुरा कर्म है तो उनका यहाँ पे खत्म करने के लिए भगवान ये बीमारी में पीड़ित किए। तो ये क्या सच है क्या?
भक्त अपना कर्म को भोगता है, कई जन्म के प्रारब्ध रहता है, तो इसलिए भक्त ये नहीं सोचते। भक्त सोचते कि तत्यनुकंपा सुसुमुख्यमाण भुंजान एव कृत विपाकम, मेरा पूर्ण पूर्व कृत्य को मैं भोग रहा हूँ, लेकिन भगवान तो बड़े दयालु है। भक्त कभी भगवान को दायी नहीं करता अपने, और जिसकी जो प्रारब्ध है से भोगता है, और भगवान की कुछ महान इच्छा उसके माध्यम में रहता है कि भगवत धाम जाएगा। मुख्य बात है कि जब जन्म समय मृत्यु के समय में किसी भी स्थिति में भगवान को स्मरण करके शरीर त्याग सकेगा। हमारे जयानंद प्रभु जो रथयात्रा के पिता माने जाते हैं प्रवर्तक, तो उन्होंने भी कैंसर हो गया तो शरीर त्याग, लेकिन जगन्नाथ जी की महान भक्त थे, प्रभुपाद जी ने कहा भगवत धाम गए, भगवत धाम गए। इसलिए ये सब लौकिक रीति, ये सब रोग व्याधि हमें देख रहे हैं, भक्तों की उसकी चेतना कैसे है, और वो भगवान के चरण में जो मन को स्थिर करके रखता है तो वो मेन है। अंत समय में जो भगवान को स्मरण करके ही शरीर त्यागेगा वही धन्य है। धामवासी तो कई होते हैं, जो धाम में जन्म लेता है वो धामवासी कहता है अपने को। कुछ लोग बिजनेस करने के लिए धाम में घर बनाकर रहते हैं, वो भी अपने को धामवासी कहते हैं, और जो धाम में शरीर त्यागता है वो धामवासी है। तो प्रभुपाद ने कहे तीनों में से कौन भाग्यवान है? हैं, जो शरीर त्यागा धाम में, धाम में शरीर त्यागा। यदि कृष्ण की इच्छा नहीं होगा शरीर नहीं त्याग पाएगा, चाहे पुरी में रहता है या वृंदावन में रहता है या नवद्वीप में, लेकिन शरीर त्यागना के टाइम में फिर वो आएगा किसी हॉस्पिटल में आके एडमिशन होकर कलकत्ता में या दिल्ली में हॉस्पिटल बॉम्बे में एडमिशन होकर वहां शरीर त्यागेगा, फिर जमराज यहां से बांध के लेके जाएगा। धाम के अंदर जमराज के अधिकार नहीं है, जमदूत नहीं जाएंगे धाम के अंदर, लेकिन जो भगवान की नहीं चाहेंगे कि ये उनके धाम में जाए तो वह धाम में शरीर नहीं त्याग पाएगा, है ठीक ना? अंत काले चमाम नित्यम स्मरण मुक्ता कलेवरम। ठीक, भक्तों के लिए कोई धाम तो सब कुछ समान है, लेकिन फिर भी धाम की महिमा, धाम की महिमा है। धाम के अंदर जो भक्त भगवान को स्मरण न करके भी धाम में शरीर त्यागता है तो उसको भी जमराज नहीं बांधेगा। जो कि जमराज रहता है वह धाम के अंदर, वो सुअर कुत्ता बिल जो बनेगा कर्म के अनुसार, लेकिन उसकी डायरेक्ट कृष्ण के कंट्रोल में है, जमदूत आसकी बांध नहीं सकते हैं। तो अन्य जगह में जो भगवान की स्मरण करता भगवत धाम जाता है, और लेकिन भगवान को स्मरण नहीं कर पाया जमदूत बांध के ले जाएंगे, लेकिन धाम के अंदर यदि कोई भगवान को स्मरण भी नहीं किया और शरीर त्यागा तब भी जमदूत इसको बांध नहीं सकते, उनका अधिकार नहीं है धाम के अंदर प्रवेश करने का। ये धाम की महिमा है। धाम के अंदर में किसी न किसी रूप से यदि कोई शरीर त्याग दिया तो फिर वो डायरेक्ट कृष्ण के कंट्रोल में है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा करते थे कि वृंदावन में जो बंदर है, कुत्ता है, सुअर है, सो क्या है, ये धाम में कैसे घूम रहे? ये सब महान संत है, किसी ना किसी कारण से थोड़ा मिस्टेक के कारण एक जन्म भोगना पड़ता है। भरत महाराज को भोगना पड़ा, एक जन्म क्या बने, हिरण बन गए। प्रभुपाद ने कहते कि जो बैरागी बनकर आए, घर बार छोड़कर धाम में आ जाते हैं और फिर माया में फंस जाते हैं तो बंदर बनते हैं, फलडाउन सन्यासी बाबाजी सो बनते बंदर है। एक जन्म इनको सफरिंग करना पड़ता है, एक लाइफ टाइम इनको सफरिंग करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है, लेकिन एक गारंटी है भगवत धाम जाएंगे भगवान की इच्छा से है। ये धाम की महिमा है, इसलिए प्रभुधाम सरस्वती पाद वृंदावन महिमा अमृत लगते हैं। कहते भाई कुछ भी हो जाए धाम मत छोड़ो, ब्रज में रहो, और उससे तुम्हारा सभी कल्याण हो जाएगा। चाहे एक जन्म तुमको कोई दूसरे जोनी में मिल जाएगा, लेकिन गारंटी है कि तुम धाम जाओगे, यदि ये निष्ठा के साथ धाम को पकड़ के रखा। लेकिन हमारा फिलोसफी वो नहीं है, हमारा फिलोसफी है कि प्रचार करना। प्रचार करते करते हम कहीं भी भगवान को स्मरण करके शरीर त्यागेंगे तो ही विशेष स्थिति है। वैष्णव अपने के लिए नहीं सोचता है, वैष्णव हमेशा पर दुखी होते हैं, और मुख्य लक्ष्य है कि होता है कि बौद्ध जीव को किसे उद्धार करना। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने भी कहा स्तुति में, प्रायण देव मन, प्राय सब स्वार्थी है, सो हिमालय में जाते हैं एकांत में कीर्तन अपने जप कीर्तन ध्यान करके स्वयं उद्धार होना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही मुक्ति नहीं चाहता हूँ, प्रायण देव विमुक्ति काम है, सो मुक्ति काम बना करके जाते ध्यान कर, लेकिन मैं ऐसा ही नहीं चाहता, मैं तो ये मूर्खों के लिए है, ये मूर्खों को प्रचार करना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज कहते ये सभी को लेकर आपके पास जाना चाहता हूँ, अकेला नहीं जाना चाहता। ये वैष्णों की महाजनों की चिंतन है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।